ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर सेकेंड सेशन ऑफ राजयोग मेडिटेशन। हु इज गॉड एंड हाउ टू कनेक्ट our self with supreme energy. So I welcome our senior sister, director of Palam Vihar Gurgaon, sister Sudesh, to deliver her speech on today's topic. Her biodata we will see on video. Sister Sudesh.
Palam Vihar Gurgaon. She is also the National Promotional Coordinator of Value Education and Spirituality, Zonal Coordinator of Education Wing of Raj Yoga Education and Research Foundation, Delhi Zone. She is the Regional Coordinator of Thought Lab established in the North Cap University, Gurgaon. She has been a lecturer of home science and is a qualified MSc, MA, BEd and a diploma holder in value education and spirituality. With her keen desire to inspire others, she has delivered over hundreds of sessions on spirituality. She has also traveled to several countries like Japan, Hong Kong, Dubai, Nairobi, and Russia to share her experiences of value education with students and educators. She has also been honored with Corporeal Zonal Award for Best Teacher in 1991, Radhakrishnan National Award for Best Teacher in 2001, and State Best Teacher Award in 2002. Thank you.
Good morning. Om Shanti. कल आपने सभी ने बहुत सुंदर सुंदर टॉपिक्स पर सेशन सुने और मॉर्निंग में सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर सुना. उसी के कॉन्टिन्यूएशन में आज मेडिटेशन शिविर का सेकेंड टॉपिक रहेगा, Knowing God, भगवान कौन है. ये बहुत ऊंचा एक टॉपिक है जिसमें आज हमारे भाग्य के द्वार खुलने वाले हैं. ये भाग्य हमारा उदय होने वाला है क्योंकि जन्म जन्म की प्यास हमारी बुझने वाली है. आप देखते हैं कितने लोग तपस्या करने के लिए जंगलों में गए, कहाँ कहाँ जाकर के गुफाओं में कंदराओं में बैठ करके उस भगवान को याद करने के लिए लोगों ने अपनी इच्छा जाहिर की. लेकिन आज आपको यहाँ पर इतना आराम से बैठे हुए और भगवान स्वयं आकर के अपना परिचय देंगे, हम बच्चों के थ्रू उनका परिचय आपको मिलेगा. तो आज के सेशन को आप ध्यान से सुनेंगे और महसूस करेंगे. महसूसता सबसे बड़ी चीज है. तो जब तक हम विजुलाइजेशन नहीं करते हैं तो महसूसता नहीं होती है. तो जो हम सुनाएंगे तो उसके साथ साथ उस पर विजुलाइजेशन भी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. तो इसमें हम देख रहे हैं कि कैसे असमंजस में आज हम हैं. हम पूछना चाहेंगे आपसे कि आपका क्या परसेप्शन है भगवान के विषय में, क्योंकि सभी का कुछ ना कुछ तो है ही. भगवान की हर एक ने अपना कोई ना कोई बनाया हुआ है. ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने भगवान अपने मन में उसकी पिक्चर नहीं बनाई होगी. तो आप सबसे हम पूछना चाहेंगे कि आप भगवान किसे मानते हैं, हम भगवान किसे कह सकते हैं, कौन है वो, कोई भी बताइए. हाँ जी, प्रकृति को हमने भगवान माना, बहुत अच्छा. हाईएस्ट एनर्जी है. हाईएस्ट इन द सेंस जी गुड. और इधर से सोर्स ऑफ, हाँ इन्फिनिट सोर्स ऑफ नॉलेज गुड. और इधर से एक सुप्रीम पावर है जी, पॉइंट ऑफ फोर्सेस, हर चीज का जो फोर्स है उसके अंदर है पॉजिटिव फोर्स है गुड. पीछे से, हाँ जी जी हाँ जी हाँ सिस्टर आप बताएं लास्ट में. जस्ट ए मिनट जस्ट हाँ जी हाँ. और हाँ आप बताइए. हाँ जो नजर नहीं आता लेकिन वो चला रही है. और इधर से जी हाँ जी हाँ हाँ सगुण और निर्गुण दोनों रूप में, साकार भी और निराकार रूप में ऐसे. हाँ जी और हो गया, किसी और को तो नहीं बताना. हाँ जी सभी जीव में भगवान है, वृक्षों में भी भगवान है, सब जगह है. तो आप सभी की जो मंतव्य हैं हम इन सभी उसमें देखते हैं, पीपीटीज में कवर हो गए हैं. यहाँ आप देख रहे हैं कृष्ण को भगवान कई लोग मानते हैं, गुरु नानक जी को जो उनके गुरु हैं उनको अपना, जैसे उन्होंने अपना माना है गुरु को, गुरु माना है गुरु नानक जी को. और उसके साथ साथ क्राइस्ट को लोगों ने भगवान का ही अवतार माना है. कई लोग भगवान को अदृश्य शक्ति के रूप में मानते हैं. जैसा कईयों ने बताया कि भगवान जो है एक नेचर है, नेचर में भी भगवान है. तो वाकई में ये हमारा एक सेटिस्फेक्शन है, अगर हम पीपल के पेड़ को पानी देते हैं, जल देते हैं, तो बड़ा ही हमको अंदर से एक सुकून सा मिलता है. मतलब कि हमने किसी को दिया, जब आप किसी को कुछ भी चीज देते हैं तो आपको एक अंदर से तसल्ली मिलती है, ये तो है ही. परंतु भगवान का जो अस्तित्व है वो अपना ही है, सेटिस्फेक्शन मिलना वो अलग चीज है, लेकिन भगवान कौन है वो हमको आज इस विषय को देखना है. इसमें दिखाया है कई लोग गौ माता को पूजते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, पूजना चाहिए और उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, लेकिन भगवान कौन है ये हमको देखना है. इधर दिखाया है कि गंगा स्नान करने से हमको क्या भगवान से हम मिल जाएंगे, कौन सा स्नान है वो, वो स्नान है ज्ञान का स्नान. ऐसे ही हवन करते हैं तो उससे वायुमंडल शुद्ध होता है, लेकिन परमात्मा ज्योति है उसको हम याद करते हुए उस कार्य को करेंगे तब तो ठीक है, अदरवाइज भगवान उसमें नहीं है. अग्नि में भगवान नहीं है, तो पांचों तत्व हैं, अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश, पांच तत्व हैं, इनको हमको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, लेकिन भगवान नहीं है. आत्मा परमात्मा और प्रकृति इन तीनों का खेल है, आत्मा परमात्मा और प्रकृति इन तीनों का अलग से रोल है. अगर हम प्रकृति को ही भगवान मान लेंगे तो वो ठीक नहीं है. अगर आप अपने फादर को ही कह दें कि आपके बच्चे की हमारे फादर यही हैं और आपको ना माने, आपके फादर हैं वो, ना कि बच्चों के फादर हैं, बच्चों के दादा हैं। तो इसी प्रकार से भगवान जो है वो अस्तित्व रखता है, उसके अस्तित्व को वही बता सकता है। मनुष्यों ने तो मिलावट कर दी, जो बताने चले थे उन्होंने कहा कि हम ही भगवान हैं, जहां देखो वहां भगवान है। किसको समझ नहीं आया तो उन्होंने कह दिया कि भगवान कण कण में है, तुम अच्छे कर्म करो तो भगवान जो है उस कर्म में ही सफलता मिलेगी, तो वही भगवान है, कर्म ही पूजा है। भगवान जो है सेवंथ हेवन में रहता है, तो क्या प्रश्न आता है कि हम क्या वहां जा सकते हैं? भगवान जो है पत्ते पत्ते को हिलाता है, कण कण में है, हर चीज में है, है? तो इस प्रकार का कॉन्सेप्ट आज हमारे मन में है, तो जो सत्यता है उससे हम बहुत दूर हो गए हैं। उस सत्यता को हमको पहचानना है। इधर दिखाया है, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, हर चीज में है, वस्तुओं में, फ्रूट्स में, चेयर में, सोफा जिस पर आप बैठे हैं उसमें, लैपटॉप में, कर्टेन में, सब जगह है भगवान। तो भगवान को हम ढूंढ क्यों रहे हैं, जब भगवान सभी के अंदर है, आपके अंदर भी है, सोफे में भी है, तो हम कौन से भगवान को ढूंढने जा रहे हैं? थोड़ा सोचिए, किस भगवान को हम ढूंढने जा रहे हैं? तो आज जो है हमारे माइंड के अंदर इतने क्वेश्चंस हैं कि कौन है भगवान, इसका समाधान कौन कर सकता है? जैसे आप देखते हैं गोल्डस्मिथ ही डिस्टिंग्विश कर सकता है कि इसमें कितनी मिलावट है सोने में। इसी प्रकार से इंसान जो है नहीं कर सकता, भगवान ही हमें बता सकता है कि मेरा सत्य परिचय क्या है। तो इसमें आज हमारी ऐसी ही ये परसेप्शन जो बनी वो इसी प्रकार से बनी, जैसे आप देखिए आपने एक स्टोरी सुनी होगी फाइव ब्लाइंड्स की। एक गांव में फाइव ब्लाइंड्स रहते थे और वहां पर एक बार हाथी आया, तो सभी ने कहा चलो हाथी को देखने चलते हैं, क्योंकि बिरला कोई ना कोई चीज आती है गांव में, तो इतना आती नहीं है। तो फाइव ब्लाइंड्स से उन्होंने भी सुन लिया, तो उनको कहा गया कि भाई तुमको तो नजर नहीं आएगा, तो तुम क्या बताओगे, तुम क्या देखोगे हाथी को? कहते हम महसूस तो कर लेंगे ना, हमको भी लेकर चलो कहाँ है हाथी। तो वो सब चले और वहां जाकर के उन्होंने हाथी को देखना शुरू किया। पहला जो है ब्लाइंड आया तो उसने उनकी जो है पूंछ को हाथ लगाया, तो उसने कहा हाथी तो एक रस्सी के समान है, मोटे रस्से के समान है। फिर दूसरा ब्लाइंड आया, हटो हटो मुझे देखने दो हाथी कैसा है, मुझे भी तो देखने दो। तो उसने उसकी पीठ के ऊपर ऐसे ऐसे हाथ फेरा, तो उसने कहा हाथी तो बहुत बड़ी दीवार के समान है, हाथी तो बहुत बड़ी दीवार के समान है। तो तीसरा ब्लाइंड बोला कि अच्छा मुझे भी तो देखने दो, तुमने देख लिया हाथी कैसा है, मैं भी तो देखूं। तो उसने हाथी की सूंड पर हाथ लगाया ऐसे ऐसे, कहते हाथी तो बहुत मोटे पाइप के समान है। उसके बाद फोर्थ ब्लाइंड ने कहा अच्छा चलो मैं बताता हूं तुम्हें हाथी कैसा होता है। तो उसने क्या किया, उसके कानों पर हाथ लगाया, कहते कि हाथी तो बहुत बड़े पंखे के समान है, है? तो और एक फिफ्थ जो था उसने उसके पैरों पर हाथ लगाया हाथी के, तो उसने क्या कहा होगा, हाँ हाथी तो बड़े खंबे के समान है। तो ये स्टोरी आप लोगों ने पहले भी सुनी होगी। तो कुछ ऐसी ही स्थिति आज हमारी भी बन चुकी है कि भगवान कौन है, तो हम अलग अलग विवेक को रखते हैं, अलग अलग बुद्धि को रखते हैं, उसके बेस पर हमने भगवान अपने अपने सभी ने बना लिए हैं। सपोज हमने कुछ दिनों तक गीता का पाठ किया, हमें प्राप्ति हुई तो हमारा गीता में विश्वास हो गया। सपोज हमने हनुमान चालीसा पढ़ी, हनुमान जी के व्रत रखे तो हमको उससे उपलब्धि हुई, तो हमारा हनुमान जी में विश्वास बैठ गया। गलत बात नहीं, अच्छी चीज में विश्वास बैठा है वो ठीक है, लेकिन हम भगवान को ढूंढ रहे हैं कि भगवान कौन है। अगर हम इसमें विवेक जोड़ते हैं कि हनुमान जी ने भी किसको याद किया, जय श्री राम, जब वो कहता था जय श्री राम तब उनके अंदर बल आता था। और श्री राम किसको याद करते थे, उनसे ऊंच कोई शक्ति थी। तो वो शक्ति कौन है आज हम जानेंगे। तो ये तो स्वाभाविक है।
ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है, तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। रूहे इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। रूहे इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। तेरे जलवों से रोशन जमी आसमां, क्यों किसी को नजर तू ना आता यहाँ। तेरी पर्दा नशीनी का अंजाम है, ढूंढता आज भी तुझको इंसान है। ऐ खुदा तू बता तेरा।
तो ये हम सभी के मन से आज आवाज निकल रही है कि भगवान हमें आप बताइए कि आप कौन हैं और कहाँ रहते हैं और आपने अपने आप को क्यों छिपाया हुआ है। तो हम आगे बढ़ते हैं। इधर दिखाया गया है कि तो स्वाभाविक है, अगर गाय है तो उसका बछड़ा होता है और एक फादर है तो उसका बच्चा भी उसी के समान होता है। इसी प्रकार से जो सोल है तो सोल का फादर कैसा होगा, हाँ कैसा होगा, वो भी सोल के समान ही होगा ना, लेकिन वो सुप्रीम सोल है, सुप्रीम है ना। तो वो सोल है, परमात्मा है, लेकिन आत्मा नहीं है, परम है। एक बार एक जगह बोर्ड्स लगे हुए थे स्कूल के अंदर, तो मैं वहां से क्रॉस कर रही थी तो देखा वहां लिखा हुआ था कि आत्माएं अनेक हैं, परमात्मा एक है। तो परमात्मा एक है, हम सब उसके बच्चे आत्माएं हैं। अब हम सोचते हैं, कोई आपके ऊपर इम्पोज नहीं किया जाएगा कि आप इसको मानिएगा भगवान ये है, या हमारा ये ब्रह्मा कुमारी इसका कहना है भगवान ये है, लेकिन हम अपने मन से सोचते हैं कि भगवान हम किसे कह सकते हैं, किसे कह सकते हैं। सबसे पहली बात, भगवान उसे कहा जा सकता है जो सभी धर्मों में माननीय हो। अगर आप देखिए, हिंदू धर्म में मानते हैं, मुस्लिम नहीं मानते हैं, और मुस्लिम मानते हैं तो सिख नहीं मानते हैं, और जिस रूप को सिख मानते हैं और उसको बुद्धिज्म नहीं मानता है, तो उसको हम भगवान कैसे कह सकते हैं। तो इसमें तो हम देखेंगे सभी धर्मों में कैसे भगवान को एक निराकार शक्ति के रूप में माना जा रहा है। स्क्रीन पर नहीं आ रहा है लेकिन आवाज आप सुन सकते हैं, थोड़ा लाउड कर दीजिए।
अब भी हमारी
इन दुखों से मुक्त होने के लिए भगवान को अलग अलग धर्मों के जरिए भिन्न भिन्न नामों से पुकारा। इन दुखों से मुक्त होने के लिए।
तो आपने देखा कि कैसे भिन्न भिन्न धर्मों के अंदर भगवान को सभी अपने मन से याद कर रहे हैं, लेकिन अज्ञानता वश हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भगवान को ऐसे हम अपने मन से तो पहचान नहीं सकते हैं जब तक वो स्वयं भू आकर के स्वयं भूमि पर अपनी पहचान नहीं कराता है। तो परमात्मा स्वयंभू है, तभी उसको कहा शिव शंभू, स्वयंभू स्वयंभू से नाम पड़ गया, जो है स्वयंभू से शंभू नाम पड़ गया। एक्चुअल में भगवान जो है स्वयं भूमि पर आते हैं। अगर हमारा परिचय भी किसी को देने को कहा जाएगा तो उसमें कुछ ना कुछ एडिशन करेक्शन कर देंगे कोई, लेकिन ऐसे ही भगवान का परिचय भी देने के लिए सभी ने जो है कुछ ना कुछ एडिशन करेक्शन कर दिया। तो वास्तव में भगवान जो है कौन है, जो सभी धर्मों में माननीय है। इसमें दिखाया गया गुरु नानक जी ने भी कहा एक ओंकार निराकार है भी सत अयोनी अकाल मूरत, तो वह भगवान एक की तरफ इशारा किया, लेकिन लोगों ने क्या किया कि गुरु नानक जी जो बताने वाले हैं उन्हीं को ही भगवान का एक अवतार मान लिया या गुरु मान लिया। इसी प्रकार क्राइस्ट ने क्या कहा, गॉड इज लाइट एंड आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं भगवान नहीं हूं। उन्होंने सही कहा क्योंकि उनको साक्षात्कार हुआ लाइट का, प्रकाश का, लेकिन इतना क्लैरिटी से भगवान का कार्य उनके द्वारा नहीं चल पाया। तो उन्होंने भगवान की तरफ इशारा किया, लेकिन लोगों ने ऐसे ही क्राइस्ट को भी अपना फादर माना रिलीजन का। और उसके बाद बुद्धिज्म में भी आप देखते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग चिनकोन से की नाम का पत्थर जो होता है उसको सामने रखते हैं और उसके ऊपर जो है वो ध्यान लगाते हैं। ऐसे ही मुस्लिम्स हैं वो हज करने जाते हैं और वहां पर मक्का मदीना में जो पत्थर है उसको वो चूमते हैं, वो भी निराकार ही आकार का है। ऐसे ही साईं बाबा ने एक भगवान की तरफ ही इशारा किया। तो आप देख रहे हैं बीच में निराकार शिवलिंग की प्रतिमा, तो वह परमात्मा शिव ज्योतिर्लिंगम सभी धर्मों में माननीय है निराकार रूप में। निराकार रूप में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा कि कैसे सभी धर्मों में उस प्रकाश को, उस लाइट को दर्शाया गया है। वही परमात्मा अब इस धरा पर आकर के स्वयं इस धरा पर आकर कर्तव्य कर रहे हैं। मैं समझती हूँ इसके लिए आप एक बार जोर से तालियां बजाएंगे कि स्वयं भगवान आकर के धरा पर कर्तव्य कर रहे हैं। आगे हम जानना चाहेंगे कि भगवान कौन है, उसकी हम पहचान करना चाहेंगे आपको। तो भगवान की पहचान करने से पहले हम बताएंगे कि परमात्मा का नाम क्या है, है ना। जैसे आपका भी कोई परिचय बायोडेटा लेता है तो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, एज क्या है, सबसे पहले नाम भाई आपका नाम क्या है, फिर उसके बाद आपकी क्या जो है क्वालिफिकेशन है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, क्या आपका एड्रेस है, है ना, क्या क्या आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, क्वालिटीज क्या हैं। तो भगवान भी हम छोटे छोटे बच्चों को, हम आत्मा रूप में तो बिल्कुल छोटे ही बच्चे हैं ना, इनिशियली स्टेज पर हैं भगवान के साथ कनेक्शन में, तो उस रूप में भगवान के साथ हम जुड़ते हैं। तो परमात्मा भी हम बच्चों को बताते हैं कि बच्चे मेरा नाम बहुत सिंपल है, मेरा नाम है शिव। शिव क्या नाम है मुख से बोलेंगे सर, शिव। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। तो परमात्मा जो है हम बच्चों का कल्याण करते हैं, ये उनका कर्तव्य वाचक नाम है, भगवान का गुणवाचक नाम है। ऐसे ही नाम नहीं है जैसे किसी का नाम होता है लक्ष्मी और वह धान कूट रही होती है, कहेंगे अरे तो लक्ष्मी है और धान कूट रही है। किसी का नाम होता है अमरनाथ और वो जो है चल बसे होते हैं, उनकी अंतिम यात्रा निकल रही होती है, है ना। तो आज नाम जो है हमारे कर्तव्य के आधार पर नहीं है, लेकिन भगवान का नाम उसके कर्तव्य के आधार पर है, परमात्मा का नाम उनके कर्तव्य के आधार पर है। तो परमात्मा का नाम सदाशिव है और शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। वे हमारा आकर के कल्याण करते हैं, परमात्मा आकर के हमारा कल्याण करते हैं। क्या कल्याण करते हैं? आप इतने दिन से यहाँ पर हैं, दो दिन हो गए हैं, आपका थर्ड डे है, तो आपको लग रहा है ना हमारे को अंदर से भगवान ने जो है ब्लेसिंग्स दिए हैं, अंदर से हमको जो है सुधारने की काफी क्लासेस दी हैं। तो ये सब क्या हुआ? हमारा कल्याण ही हो रहा है ना। कोई हम भी आप जैसे ही थे कुछ साल पहले, आज से 50 साल पहले जब हमने ये ज्ञान लिया तो हम भी ऐसे ही थे, जानने की उत्कंठा में थे। आज हम आपको वो मैसेज कैरी ऑन करके दे रहे हैं। तो परमात्मा जो है वह निराकार शिव है और आकर के हमारा कल्याण करते हैं, पतित से पावन बनाते हैं, हमें हमारे को आकर के सुधारते हैं। हमारे अंदर जो बुराइयां हैं वो हमारी अंदर से बुराइयां निकालते हैं। तो परमात्मा जो है वो, उनका नाम है शिव। देख रहे हैं ना आप यहाँ पर शिवलिंग, शिवलिंग आप देख रहे हैं, शिवलिंग जो है ये निराकार शिव की ज्योति की ही यादगार है। परमात्मा को ज्योति बिंदु कहा गया। देखिए जब भी कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो उस समय क्या करते हैं कि ज्योत जगाएंगे। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करने के समय ज्योति जगाते हैं, है ना। तो वो ज्योति ही परमात्मा को इंडिकेट करती है, वह परमात्मा का ही दिव्य रूप है। अब उस ज्योति को कैसे बनाएं, भक्त कैसे पूजेंगे, उसको टेम्पल्स के अंदर एक लिंग का रूप दे दिया, ज्योति का रूप दे दिया और शिवलिंग निराकार रूप दे दिया। ना वो गोल है, ना चौकोर है, ना त्रिकोण है, लेकिन वो अंडाकार है, अंडाकार है, है ना। आप देखिए कोई भी जो सीड होता है उसका जो शेप है वह अंडाकार ही होती है, है ना। तो ऐसे भगवान भी इस सृष्टि का बीज रूप है, तो उसका भी जो आकार है वो कैसा है, ओवल है, अंडाकार है, अंगुष्ठाकार है, है ना। तो परमात्मा जो है निराकार है, ज्योति स्वरूप है, जो मंदिर में बीच में बैठा है। जब हम छोटे बच्चे थे तो ज्ञान तो 9th क्लास में जब मैं आई तो तब मुझे मिला, लेकिन उससे पहले हम वहां पर दूध लेने जाते थे और वहीं बीच में रास्ता पर में एक टेम्पल पड़ता था और वहां पर शिवलिंग होता था, तो हमें बड़ा अच्छा लगता था उसको देख करके। कुछ पहचान नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन अच्छा लगता था बड़ा। फिर बाद में जब पहचान मिली तो बहुत ही अच्छा लगने लगा कि ये तो हमारे फादर हैं, ये तो आत्मा के पिता बैठे हैं यहाँ पर। मंदिर में जाते थे तो बड़ा मतलब खुशी होती थी कि हमारे फादर अब इस सृष्टि पर आ चुके हैं। तो वो परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के अपना कार्य कर रहे हैं। तो नाम हुआ शिव और उनका फॉर्म हुआ ज्योति बिंदु, ज्योति बिंदु, है ना। भगवान जो है, निराकार का कई जो है मीनिंग ये ले लेते हैं कि उसका कोई आकार ही नहीं है। अब किसी चीज का आकार ही नहीं है तो हम उसको ढूंढ ही किसको रहे हैं, है ना। उसका अगर कोई आकार ही नहीं है तो हम ढूंढ किसको रहे हैं। कहते ना मैं किसी चीज को ढूंढ रही हूं, क्या है? तो कहेंगे क्या है वो, कहते वो बस पता नहीं। फिर आप ढूंढ ही किस चीज को रहे हो। सपोज आपकी नोटबुक गुम हो गई है तो आप ढूंढ रहे हैं, तो कहें कोई आपसे पूछेगा भाई लाओ मैं भी तुम्हें हेल्प कर दूं, तो कहेंगे कि पता नहीं वो कैसी है, मैं तो ढूंढ रही हूं बस। तो ऐसे ही हम भगवान को भी ढूंढ रहे हैं। अब वो भगवान कैसा है हमको ये नहीं मालूम, वो भगवान कैसा है, है ना। तो उस परमात्मा को हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो परमात्मा ज्योति बिंदु है जिसको हम महसूस कर सकते हैं इन आंखों से। जिसको साक्षात्कार होता है वो तो देख सकते हैं, लेकिन इन आंखों से वो चीज नहीं देख सकते, क्योंकि हम अपने को देख रहे हैं। आप अपने को देख रहे हैं, आप भी अंदर से देख रहे हैं, आपके अंदर आत्मा है, मानते हैं ना। ये तो आपके अंदर एनर्जी है, है ना, है ना एनर्जी, लेकिन आप जो हैं देख नहीं रहे हैं उसको। आप कहें कि हमें ऐसे ही भगवान को दिखा दो, तो भगवान भी महसूस करने की चीज है। भगवान को भी हम महसूस करते हैं, उसके कर्तव्यों को महसूस करते हैं, उसके जो एक्ट्स हैं उसको हम महसूस करते हैं। उससे बुद्धि लगाने से हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आता है, तो इसलिए हमको लगता है कि इस शक्ति से आगे और कोई शक्ति हमारे अंदर बदलाव नहीं ला सकती थी। तो परमात्मा रूप में जो है ज्योति बिंदु है, लेकिन गुणों में वह सिंधु है। गुणों में परमात्मा सिंधु है। अथाह गुण हैं, भगवान के बहुत सारे गुण हैं, ईश्वर के अनलिमिटेड गुण हैं। कहते हैं सारा सागर स्याही बनाओ और जंगल से लकड़ी तोड़कर उसकी कलम बनाओ और पृथ्वी को क्या बनाओ, पेपर बनाओ और सरस्वती को लिखने के लिए बैठा दो भगवान की महिमा, तो भी वो पेपर पृथ्वी का कम पड़ जाएगा। इतनी महिमा है और हम उस भगवान की महिमा को जानते ही नहीं है, तो ये कैसे काम चलेगा। भगवान की महिमा जो यहां आप देख रहे हैं, कितने गुण हैं उनके, जैसे भगवान ज्ञान का सागर है। अभी तो आपने कॉन्फ्रेंस के दौरान थोड़ा सा ऊपर ऊपर के बेसिक्स मोटे मोटे रूप में सुने हैं, लेकिन इस ज्ञान की गहराई में आप जाएंगे आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। डेली हमारी क्लासेस होती हैं, किसी भी दिन छुट्टी नहीं होती है। जब हम ज्ञान में चले ना, फिर सेंटर पर भी हमको रहने का मिला, तो उस समय हमने सोचा सेंटर पर कभी छुट्टी नहीं होगी क्या। जैसे स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो पहले ही एम्प्लॉई जो है अपनी अपॉइंटमेंट लेटर लेने के समय पूछता है कि डे किस दिन ऑफ होगा, पूछ ही लेता आपस में एक दूसरे से। तो इसी प्रकार से हम लोग को लगता है कि यहाँ पर कोई ऑफ होना ही नहीं चाहिए। वैसे हम ऑफ कर लेते तो बात अलग है। तो भगवान का इतना असीम ज्ञान है कि उसको हम डेली सुनते हैं, डेली सुनते हैं है? तो वो परमात्मा ज्ञान का सागर है और परमात्मा शांति का सागर है। परमात्मा शांति का सागर है, वो हमें इतनी शांति देता है। जैसे आपने थोड़ी थोड़ी शांति तो यहाँ पर अनुभव की होगी, की है थोड़ा है, हाथ खड़ा करके बताएंगे की है ना। तो ये कोई ऐसे ही नहीं मिली है शांति, कोई भगवान जादू नहीं करता है। ये प्यारे भाइयों और बहनों, ये शांति हमारे अपने स्वरूप में पॉजिटिव थॉट्स चलाने से आती है वातावरण में, और वातावरण में आने से औरों को महसूस होती है, तभी आपको ये महसूस हो रही है। तो परमात्मा प्रॉपर वे बताता है, भगवान कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाता है। भगवान हमारे ऊपर ऐसे सेंस डेवलप करता है कि बच्चे ये नॉलेज लो और इस ज्ञान को अंडरस्टैंड करो, अंडरस्टैंड करके अपनी लाइफ में उतारो और फिर दूसरों को इसका फायदा दो। तो ये है परमात्मा का पढ़ाने का प्रोसेस। परमात्मा जो है शांति का सागर है, आनंद का सागर है। इतना आनंद, इतनी खुशी, इतना प्यार बाबा से हमें मिलता है, इतना प्यार मिलता है। वो प्रेम का सागर है, सदगति दाता है, लिब्रेट करने वाला है, इनकॉर्पोरियल है और डेथ एंड बर्थ से परे है। और परमात्मा जो है खुशियों का भंडार है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है भगवान गीता सर्वनाइजर है। भगवान ने गीता का ज्ञान दिया, ये वही गीता का ज्ञान है। मुझे याद आता है बचपन में हमारी मदर जो है गीता पढ़ती थी, तो हम भी थोड़ा थोड़ा कभी किताब उठा करके देखते थे, लेकिन समझ नहीं आता था। मालूम था चलो बहुत अच्छी किताब है, देखना चाहिए पढ़ना चाहिए, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आता था। लेकिन अब हम उसी गीता को उठा करके पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से समझ आता है। उस गीता से हमें और भी खुशी और प्यार मिलता है कि वह भगवान आकर के हमें ये सच्चा गीता ज्ञान सुना रहे और हमारे जीवन में वो आ गया है। पहले समझ नहीं आता था और अब वो हमारे जीवन में उतार दिया है। तो ये कौन उतार सकता है? ईश्वर, कोई इंसान नहीं कर सकता। तो वो ईश्वर ही गीता सर्वनाइजर है। हाँ सिस्टर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, आपका प्रश्न अच्छा है। भगवान जो है कर्मों के उसमें नहीं आता। अगर कर्म में आएगा, डेथ एंड बर्थ में आएगा, तो फिर वो सृष्टि का पिता नहीं हो सकता। यही एक मेजर डिफरेंस है आत्मा और परमात्मा में। आत्माएं जो हैं वह जन्म मरण के चक्कर में आती हैं, लेकिन परमात्मा जन्म मरण से मुक्त है। केवल एक ये डिफरेंस है। वो शांति का सागर है, हम शांत स्वरूप हैं। वो प्रेम का सागर है, हम प्रेम स्वरूप हैं, है ना। जो वो है वो हम हैं, बस हम जन्म मरण में जरूर आएंगे। हम इस साइकिल में जरूर आएंगे, कर्मज जरूर हम करेंगे, भगवान नहीं आएगा। अगर वो आएगा तो फिर तो वो भी इंसान बन जाएगा, इसीलिए वो ऊपर बैठा है। ऊपर बैठ के सृष्टि का नियंता इस सृष्टि को चला रहा है। तो भगवान के पास बहुत पावर्स है, लेकिन सारी चीजें भगवान डिस्क्लोज हमारे पास नहीं करता है। बहुत कार्य है उसके पास, बहुत ज्यादा उसके अंदर अथा ज्ञान है। अब हम जानेंगे कि वह भगवान रहता कहां पर है, परमात्मा का निवास स्थान कहां है। अगर आप अपना रेजिडेंस नहीं लिखेंगे जो अपना एम्प्लॉयमेंट के लिए जाएंगे, तो फिर कोई कहेगा अरे तुमने तो अपना एड्रेस ही नहीं लिखा। तो इसी प्रकार से भगवान का एड्रेस हमको नहीं मालूम, लेकिन यहां आकर के भगवान, अभी जैसे आप सभी ने कहा ये खुदा तू बता तू रहता कहां है ना, तो भगवान स्वयं आकर के बताते हैं। इसके पीछे बड़ी स्टोरी है, आपके सेशंस में भी उसको कवर किया जाएगा, और फर्स्ट डे मैं समझती हूँ शायद किया भी होगा कि हिस्ट्री ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ पर दिखाया है कि भगवान कहाँ रहता है, तो ये डिवाइन विजन के द्वारा पता लगा कि परमात्मा का जो धाम है वो कहाँ है। परमात्मा का जो धाम है वो परम धाम है, निराकार धाम है। परमात्मा जो है इस संसार से ऊपर, अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश के इन पंच तत्वों से ऊपर ब्रह्म तत्व में रहते हैं, ब्रह्म तत्व जिसको सन्यासी लोग भी याद करते हैं, ब्रह्म लोक को सन्यासी लोग याद करते हैं और उसमें लीन होने की कोशिश करते हैं, ब्रह्म तत्व में लीन होने की कोशिश करते हैं। तो परमात्मा जो है ब्रह्म लोक का वासी है और वह वहां रहते हैं ब्रह्म लोक में, निराकार भगवान। तो वहां से आकर के इस संसार में आप कहेंगे कैसे आएंगे, वो तो निराकार है। वे निराकार प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आते हैं, तभी आपने सुना होगा बूढ़ा ब्राह्मण बन के कंचन महल की हो, सत्यनारायण की कथा में भगवान जो है परकाया प्रवेश करते हैं। तभी आपने देखा है मंदिरों के अंदर शिवलिंग के सामने एक नंदी बैल रखा होता है, बैल, बैल जो है शिव की सवारी है ना, बैल के ऊपर शिव जी बैठ करके सवारी करते हैं। तो बैल जो है नरतन है, नर है, है ना, तो ब्रह्मा बाबा नरतन है, उसके अंदर भगवान ने प्रवेश करके भ्रकुटी में उनके मुखारविंद से हमें ये ज्ञान दिया। अब भक्तों को समझाने के लिए लोगों ने क्या किया, अब उस चीज को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, तो उन्होंने बैल बना दिया। अब आप देखो बैल के ऊपर बैठकर भगवान कितना कार्य कर लेगा, पहले तो बैल को ही संभालने वाला चाहिए कोई, है ना। तो बैल जो है नरतन को रिप्रेजेंट करता है, ब्रह्मा बाबा को रिप्रेजेंट करता है, और उनके द्वारा शिव बाबा ने आकर के ज्ञान दिया। इसका डिटेल आपको आगे के सेशंस में मिलेगा, तो या अगर यहाँ नहीं होता है तो आप अपने सेंटर्स जो नियर बाय हैं तो वहां जाकर के जरूर सुनिएगा कि कैसे ये संस्था की स्टार्टिंग हुई और कैसे ये डिवाइन विजन मिले और कैसे ब्रह्मा बाबा के थ्रू बाबा ने कैसे उनको दिव्य दृष्टि के द्वारा ये सब दृश्य दिखाए और कैसे उन्होंने इतने गुरु किए हुए थे, गुरु के सत्संग में बैठे हुए थे और वहां से उठ करके अपने पूजा के कमरे में ब्रह्मा बाबा आए और वहां पर उनको एकदम कमरे में लाल प्रकाश और उनके मुख से निकल रहा था निज आनंद स्वरूपम शिवो अहम शिवो अहम, ज्ञान स्वरूपम शिवो अहम शिवो अहम, प्रेम स्वरूपम शिवो अहम शिवो अहम, उनके मुख से निकल रहा था। जब बाबा के घर के फैमिली मेंबर्स बाबा के पास गए तो बाबा ने उनसे पूछा बाबा क्या था, बाबा इधर उधर देखने लगे क्या था ये, कुछ नहीं समझ में आया उनको। फिर धीरे धीरे कैसे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते गए शिव परमात्मा कि मैं वो लाइट हूं, मैं वो परमात्मा हूं, आज से मैं तुम्हारे तन में आकर के ये ईश्वरीय ज्ञान सुनाया करूंगा। तो एक बार फिर से ताली बजा लीजिए, कितना अच्छा मोमेंट है कि परमात्मा जो है ब्रह्मा के तन में आकर के फिर से हमको ये ईश्वरीय ज्ञान दे रहे हैं। तो भगवान ने आकर के ये ज्ञान ब्रह्मा के तन से दिया। तभी आपने सुना है ब्रह्मा सृष्टि का क्रिएटर है। हम सुनते थे कि ब्रह्मा कैसे आकर के मनुष्यों को बनाएगा, लोगों ने समझा था एडम और ईव होते हैं तो उनसे फिर उन्होंने कोई फल चख लिया तो उनसे फिर सृष्टि की रचना हुई। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? अपनी अपने मंतव्य जिसे कहें, सृष्टि के लिए ब्रह्मा ने जो है बैठ के सृष्टि रची होगी तो कैसे रची होगी? क्या उसने पुतला बनाया होगा फिर उसमें जान डाली होगी? पुतला किस चीज का बनाया होगा, कहां से वो मटेरियल लाया होगा, है ना? तो ब्रह्मा ने कैसे आकर के, भगवान ने कैसे आकर के ब्रह्मा के तन के द्वारा हमें ज्ञान दिया और जो हम बने बनाए इंसान हैं उनके अंदर जान डाली। आपको बताएं हमारे सेंटर पर आने वाले भाई बहन हर एक तरह के होते हैं, तो उसमें से एक जो बहन है वो आई थी और उन्होंने बताया, कहती कि दीदी मैंने ये ज्ञान सुना और ज्ञान सुन करके आज मेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई है, मुझे लगता मैं कुछ भी बीमार नहीं हूँ। और इससे पहले मैं डेली घर में बेड पर लेटी रहती थी, इतना भी काम नहीं कर पाती थी, किचन में भी जरा नहीं जाती थी, मेरी बेटी जो है वो काम करती थी। और यहाँ पर आने के बाद अब मेरे अंदर इतना परिवर्तन आया, मैं किचन में जाकर के अपने पति को भी खाना अब खिलाती हूँ, इतना परिवर्तन। तो ये है जान डालना, ये ज्ञान जो है हमारे अंदर जान डालता है, हमारे अंदर बल भरता है। ये कोई थ्योरेटिकल बातें नहीं है, प्रैक्टिकल है। आप भी देखिएगा आपका वर्क आउटपुट इतना बढ़ जाएगा अगर आप मेडिटेशन की सच्ची दिल से प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप ज्ञान की इम्प्लीकेशन करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। अगर आप अप्लाई ही नहीं करेंगे तो ज्ञान से आपको उतनी उपलब्धि नहीं होगी। आप कहेंगे दवाई तो ले ली है लेकिन क्या हुआ, खाई नहीं है। अब खाएंगे नहीं तो फिर असर कैसे होगा? तो ये ज्ञान भगवान का इतना अच्छा असरदार है, आप जरा सी भी खाएंगे इसको तो इससे आपके अंदर जरूर परिवर्तन आएगा, जरूर आएगा। तो भगवान आकर हमारे अंदर जान डालता है। तो हम बता रहे थे कि भगवान कहाँ रहता है, ये पंच तत्वों का आकाश तत्व है, ब्लू जो देख रहे हैं, और इससे ऊपर जो लाइट है वो सूक्ष्म लोक कहलाता है, और इससे ऊपर ब्रह्म तत्व है जो ऑरेंज कलर में आप देख रहे हैं ना, पहुंच जाइए वहां पर। हाँ, ऑरेंज कलर का जो है वो है सोल वर्ल्ड। तो इस दुनिया के अंदर, हाँ ये है सोल वर्ल्ड, तो इसके अंदर भगवान जो है परमात्मा, आप देख रहे हैं ना पॉइंट ऑफ लाइट सबसे ऊपर जो ट्विंकल कर रहे हैं, वह परमात्मा ज्योति बिंदु परमात्मा रहते हैं। अभी हम इसके बाद जब मेडिटेशन करेंगे तो वहां पर चलेंगे बुद्धि के द्वारा, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिए। तो परमात्मा वहां रहते हैं और जहां फादर रहते हैं वहीं बच्चे रहते हैं, जहां आप रहते हैं वहीं आपके बच्चे भी रहते हैं ना उसी घर में। बड़े होने के बाद भले ही वो अपना इंडिपेंडेंट हाउस बना लेते हैं लेकिन बचपन में तो बच्चे बच्चों पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं। तो यहां पर हम जो छोटे छोटे स्टार्स हैं ना आप देख रहे, छोटे छोटे ट्विंकलिंग स्टार्स हैं, ये सभी सोल्स हैं, हम सभी आत्माएं हैं। हम वहां से ही यहां आए थे, विजुलाइज करिए, उस धाम से हम यहां आए थे। वह पॉइंट ऑफ लाइट है ज्योति बिंदु भगवान, उसके पास हम बड़े प्यार से रह रहे हैं ब्रह्मलोक में, उस धाम में हम रह रहे हैं है? तो ये परमात्मा का धाम है जिसे ब्रह्मलोक कहते हैं, परम धाम कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं है? परमात्मा का निराकारी लोक कहते हैं। तो इसके अनेकानेक नाम हैं। तो अब ये प्रश्न आता है कि परमात्मा कब आते हैं, कोई बताएंगे? कोई उनका पीरियड है या जब हम बुलाने के लिए खड़े हो जाए तब वो आ जाएंगे है? जब हम बुलाएंगे तब आएंगे। और धर्म की ग्लानी होती है तब आते हैं, और जब उनका समय होता है तब आते हैं, है ना? जैसे आपको डेट दी हुई थी तो उन्हीं डेट्स के अकॉर्डिंगली आप आए। तो परमात्मा भी इतनी बड़ी हैसियत रखते हैं तो वो भी अपने समय पर आते हैं, एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं आते हैं। और वो समय है अति धर्म ग्लानी का समय, डी जनरेशन का समय, जब उनकी जरूरत है अभी देखिए थोड़ा सा लाइट की अंधेरा है तो लाइट की जरूरत है, और रोशनी होगी तो आप कहेंगे कि क्यों बेकार में लाइट ऑन है, इसको बंद कर दीजिए। तो भगवान की जरूरत अब है। भगवान जो है ऐसे अज्ञान अंधकार के समय पर आते हैं, तो ये वो समय चल रहा है जबकि परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुके हैं, और आकर के आपको बताएं उनका काम भी पूरा हो चुका है, अब वो परमात्मा चले भी गए हैं, उसका भी गहरा राज है, वो आपको डिटेल में बाद में बताया जाएगा, क्योंकि 1937 से ईश्वरीय कार्य चल रहा है और उसके पश्चात परमात्मा का ये कार्य अभी पूर्ण हो गया है। अभी जो है हमारी पढ़ाई जो है रिवाइज एंड लिब्रेशन कोर्स वाली चल रही है, जैसे होता है ना आप सभी एजुकेशनिस्ट हैं, कोर्सेज कराते हैं और कोर्सेज कराने के बाद रिवीजन कोर्स भी होता है। एग्जाम से पहले अगर रिवाइज नहीं कराएंगे तो स्टूडेंट्स के पता नहीं रहता कि उन्होंने कितनी पढ़ाई पढ़ी है। तो इसी प्रकार से हमको भगवान आकर के इस पढ़ाई की रिवीजन भी करा रहे हैं, वो रिवीजन भी हो गई है, अब लिब्रेशन कोर्स चल रहा है। तो ये एजुकेशन है जिसमें अब बहुत आगे हम अब बढ़ चुके हैं। तो परमात्मा घोर कलयुग के अंत में आते हैं और आकर के क्या करते हैं, पांच विकारों ने ये सृष्टि ऐसे अपने हाथों में ली हुई है, चंगुल में ली हुई है। आज हमारे मन को वेस्ट थॉट्स ने पकड़ा हुआ था ना, तो ये वेस्ट थॉट्स जो है हमारे कैसे हमारे को जकड़े हुए थे, हमारे को सुसाइड तक जो है लेके चले जाते हैं ये वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स अपने उसमें हम इतने एडमेंट हो जाते हैं, कोई नहीं मानता है तो हम अपने ईगो में आकर के ना दूसरे के साथ बहस करने लग जाते हैं, और यहां तक कि हम एक दूसरे को मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो इतना अहंकार इतने विकार हमारे ऊपर हावी हो चुके थे, ऐसे समय पर भगवान ने आकर के इनसे हमको लिब्रेट किया, ऐसे लिब्रेट किया। तो ये विकार आते हैं तो आप देख रहे हैं कि पांच भूत कैसे धीरे 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 ट्राई कर रहे हैं, भाग रहे हैं, आपके अंदर से भी थोड़ा थोड़ा भाग रहे होंगे ना ऐसे, अब घर में जाके फिर से ना आ जाए, लेकिन इनको भगा ही देना है। तो परमात्मा जो है ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। फिर हमने क्या समझ लिया कि वो जो सूर्य है उसी को हमने समझ लिया कि वो आता है, रोशनी होती है, ठीक है बहुत अच्छी बात है, सूर्य है उसके बिना तो कुछ भी नहीं है, हमारी जो है अंदर से डाइजेशन भी नहीं होगा, और वैसे भी देखिए इतने सारे जर्म्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं कुछ महीनों तक, अगर सूरज ना निकले तो कितना हो जाता है, सीलन सीलन हो जाती है, तो ये सूरज का निकलना भी बहुत जरूरी है, वो है बाहर का प्रकृति उसका, लेकिन ये परमात्मा है ज्ञान का सूरज है। तो वो परमात्मा जब आते हैं तो हमारे को इतना ज्ञान देते हैं, जैसा भी हमारे अंदर जैसे सेटबैक है, कोई भी ड्रॉबैक है या कोई भी हमारे अंदर ऐसे विकार है, उसके लिए वही सलूशन भगवान आकर के देते हैं। तो ये बहुत जैसे हमारे को एक गाइड के रूप में परमात्मा मिल गए हैं। वो परमात्मा ब्रह्म लोक से कोई ऐसे ही नहीं कि वहीं बैठे रहते हैं, अगर हम यहां पर बैठे भगवान के पास तो वो परमात्मा हमको उसका सोल्यूशन देते हैं। आपको बताएं जब हम शुरू में ज्ञान में चले तो छोटे बच्चे तो बड़ा क्रिएटिव माइंड होता है और बड़ा ही हम उस परमात्मा को यूज भी करते हैं, तो जैसे भगवान को हम कहते थे, भगवान हमें हर बात की सलाह देते थे। हमारी बड़ी सिस्टर जो है वो फिजिक्स में उन्होंने एमएससी किया, तो उनको बहुत सेवा का शौक रहा करता है, और जैसे उन एग्जामिनेशन डेज के अंदर काफी एग्जीबिशंस एंड फेयर्स वगैरह लगे थे, वो 11th क्लास में थे उस दिन, उस समय 11th क्लास होती थी, बोर्ड एग्जामिनेशन होते थे, सॉरी एमएससी में थी वो, हाँ एमएससी में थे, तो फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स थे। तो जब वो प्रैक्टिकल के दिन जो है सेवा में चली गई, सेवा में जाने के बाद रात को आई, और रात को आकर के अब कहा, भगवान जी मैं आपकी सेवा में गई थी, अब ये जो प्रैक्टिकल्स की लिस्ट है इसमें मेरा हाथ रख दो जो प्रैक्टिकल आएगा। तो भगवान की याद में उन्होंने ऐसे हाथ रखा और वही प्रैक्टिकल आप मानेंगे नहीं उनके लिए आया। मतलब कहने का है अगर हम भगवान के लिए सेक्रीफाइस करते हैं ना तो वो भी हमें मदद करता है। तो हमें कोई इसी उस काम के लिए यूज नहीं करना है भगवान को, लेकिन वो भगवान लाइव है, वो कोई बॉक्स में बंद नहीं है या किसी बोर्ड में लाइट प्रकाश के रूप में, बस उसी रूप में हमें नहीं देखना है, उस परमात्मा को हमें यूज करना है। भगवान को ब्रह्म लोक में देखते हुए उसके पास अपनी बुद्धि लेकर के जानी है, भगवान के साथ वार्तालाप करनी है। ऐसे उसके साथ हम चुपचाप ना बैठे रहे, उसके साथ बड़े प्यार से आप मुलाकात कीजिए, बातें कीजिए, आपको देखिए कितना मजा आएगा, है ना। तो इस प्रकार से वो परमात्मा आकर के हम बच्चों को ये बताते हैं। तो अभी हम मेडिटेशन से पूर्व कुछ क्वेश्चन आपके अगर हैं तो वो थोड़ा लेना चाहेंगे, अगर आपको कोई डाउट है या आपको कुछ विशेष लगा अच्छा, कुछ भी आप बताना चाहते हैं है? बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। हाँ जी, ओम शांति जी। कौन सा शब्द? अच्छा, ज्ञान में आने का मतलब क्या है? मतलब ये नॉलेज को लेना शुरू कर दिया, जैसे आप बीएससी में एडमिशन लेते हैं तो कहते हैं ना, मैं बीएससी में आ गया, बीएससी ऑनर्स में कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो ऐसे ही अब हम कहते हैं ज्ञान में आ गए हैं, हम ये स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में बुद्धि से हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, रहते तो घरों में ही है लेकिन ज्ञान को हमने ले लिया है, ज्ञान में आ गए, ठीक है। और हाँ जी पीछे, हाँ हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ हाँ। इसमें ऐसा है सिस्टर कि जैसे हम आत्माएं ऊपर से एक बार आ जाती हैं ना, फिर ऊपर बीच में नहीं जाती हैं, ये साइकिल पूरा जब तक फिनिश नहीं होता, समझे ये बात, कि ये 5000 ईयर्स का पूरा साइकिल है। जब हम सोल्स ऊपर से नीचे आ गई, सतयुग में आई, तो डिफरेंट युगाज हैं वो भी आपको बताए जाएंगे, तो उनमें से क्रॉस करते करते एंड ऑफ कलयुग तक हमें आना ही होगा, है ना। उसके बाद ही जो है, जैसे ट्रेन नहीं होती जो राजधानी से आप आए अहमदाबाद जाएगी तभी वो लौट करके आएगी, बीच में से लौट के नहीं जाएगी, कोई कहे भी बहुत पैसेंजर है दिल्ली में खड़े, आओ आओ लौट कर आ जाओ, नहीं नहीं, पूरी एंड पॉइंट तक जाएगी। इसी प्रकार से हम ऊपर से आए हैं तो पूरे साइकिल को कंप्लीट करके ही जाएंगे, है ना। और मोक्ष की बात जैसे आती है तो उसमें हम कहते हैं कि हम जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए, वो नहीं हो सकता, है ना, वो पॉसिबल नहीं है, वो केवल एक परमात्मा ही छूट सकता है। लेकिन हम अपनी चाहना रखते हैं, संत गुरु लोग भी इस चीज को करते हैं, लेकिन वो जो है इस जन्म मरण के चक्कर से वो भी नहीं छूट सकते हैं। हाँ, मोक्ष हम इस भाव से कह सकते हैं, इस देह में रहते हुए हम जैसे एक इस देह के बंधन से परे हैं। हाँ जी, हाँ, अभी मेडिटेशन में कराएंगे, है ना। तो इस परम धाम में परमात्मा को हम कहते हैं ना, वो परम धाम में रहता है। इसके लिए आप देखिए प्रैक्टिकली आप लोग क्या कहते हैं, जब कोई दर्द होता है, दुख होता है, तो कहते हैं ऊपर वाला जाने, वो ऊपर वाले नीली छतरी वाला जाने, हम ऊपर की तरफ इशारा करते हैं। इसका मतलब हम वहां से आए हैं, तभी हमको वो भासना आती है और हम बार बार वहीं इशारा करते हैं कि भगवान वहां रहता है, परमात्मा वहां रहता है। तो परमात्मा ब्रह्मलोक का वासी है। और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ जी, यस, ओम शांति। हाँ देखिए, जैसे कि भगवान तो निराकार है, वो कोई कॉर्पोरियल फॉर्म में नहीं है। पहले चर्चा की थी ना कि परमात्मा वही हो सकता है जो सभी धर्मों में माननीय हो, और परमात्मा वही हो सकता है जो जन्म मरण के चक्कर से न्यारा हो, परमात्मा वही हो सकता है जो दाता हो, देने वाला हो, परमात्मा वही हो सकता है जो सर्वोच्च हो, उससे आगे कोई ना हो। तो अब राम कृष्ण ये सभी तो जन्म मरण के चक्कर में आए, अभी हमारे सामने लाइव रूप में तो कोई नजर नहीं आ रहा है ना, केवल उनकी यादगारें हैं। तो वो जो है सर्वोच्च भी नहीं कह सकते, क्योंकि राम ने जो है शिव की पूजा की, है ना, रामेश्वरम में, तो सर्वोच्च नहीं कह सकते, अवतार इनको हम नहीं कह सकते, हम इनके अंदर जो सोल है ना, आत्मा, उस आत्मा की प्रेजेंस मानते हैं, वो आत्मा उनके अंदर है, उनके अंदर परमात्मा नहीं है, शिव की आत्मा नहीं हो सकती उनके अंदर, परमात्मा की आत्मा उनमें नहीं है, उनकी अपनी डिवाइन सोल है। यही यहाँ पर नॉलेज दी जा रही है, ये जो स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है ना, तो इसमें ईश्वरीय ज्ञान दिया जाता है, जो आत्माएं हैं उनको डिविनाइज किया जा रहा है, आत्माओं को देवात्मा बनाया जा रहा है। यहाँ का जो लक्ष्य है, नर को नारायण बनाना, नारी को लक्ष्मी बनाना है, है ना। तो ये अवतार की बात जो कही आपने, तो सतयुग की दुनिया जब आएगी तो उसमें जाकर के देवी देवता सब आएंगे, भगवान नहीं आएगा, उसके बच्चे आएंगे, आप सब आएंगे, आप सब इस ज्ञान को लेके अपनी आत्मा को इतना पावन और पवित्र बना लेंगे तो आप आएंगे, 100% आएंगे, थोड़ा भी ज्ञान सुनेंगे तो आप आएंगे। कई लोग हंसी में कहते हैं, चलो हम तो गेट कीपर ही बन जाएंगे, है थोड़ा हमें गेट पर ही बैठने को मिल जाएगा, या कृष्ण के साथ थोड़ा सा हम उसके दास दास ही बन जाएंगे, लेकिन जब मिलने को होता है ना, लगता है हमें पूरा हक मिलना चाहिए, तो हम भगवान के बच्चे बने हैं, तो बच्चे बनकर हम पूरा ही हक क्यों ना लें, भगवान की यूनिवर्सिटी में भी हम आए और पढ़ करके भी हम दास दासी बने तो फिर फायदा क्या है, दास दासी चंडाल बनेंगे तो फिर फायदा क्या है। तो भगवान की चाहना यही है कि जितने भी एजुकेशनिस्ट ब्रदर एंड सिस्टर्स आए हैं वो तो बने ही आप सब, लेकिन आप अपने स्टूडेंट्स को भी जो है वैल्यूज के बेस पर रखते हुए इस नॉलेज को दें, तो उससे आपको बहुत बहुत आगे उस पढ़ाई में भी इंटरेस्ट आएगा और साथ साथ आपका पुण्य का खाता भी बहुत बढ़ता जाएगा। ठीक है, और किसी का क्वेश्चन है कुछ? हाँ जी, हाँ एक मिनट, वो भाई बोल रहे हैं। हाँ जी, आप बताइए, अगर आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो उसकी जरूरत क्यों होती है चार्ज करने की? होती है ना, यूज करना है। ऐसे ही हमको भी अपनी लाइफ के अंदर खुशी चाहिए, शक्ति चाहिए, जो कि आज हमारे से बहुत दूर हो गई है, फ्रस्ट्रेशन आ गया, इरिटेशन आ गया, स्ट्रेस आ गया है ना, तो इसलिए परमात्मा की इसलिए जरूरत है। हाँ, जो उसके अंदर है उसको एब्जॉर्व करने के लिए, परमात्मा के अंदर सब कुछ है, पॉजिटिव एनर्जी है, उस पॉजिटिव एनर्जी को एब्जॉर्व करने के लिए हमको परमात्मा से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। कुछ करना, ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी के क्वेश्चन बहुत सुंदर सुंदर पूछे आपने, तो अभी हम मेडिटेशन के लिए चलते हैं। ठीक है, एकदम रिलैक्स होकर के बैठ जाइए और अंदर में एक खुशी पैदा कीजिए। कि मैं किसके पास जा रही हूं, जिसे मैं जन्म जन्म से ढूंढ रही थी, अपने प्यारे पिता से ही मिलने जा रही हूं, अपना सारा ध्यान मस्तक में जहां तिलक लगाते हैं वहां पर ले आइए, मैं आत्मा इन आंखों से देखती हूं, मुख को यूज करके मैं बोलती हूं, ये मुझे इंस्ट्रूमेंट मिले हैं, लेकिन मैं इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करने वाली एक अजर अमर अविनाशी शक्ति हूं। विजुलाइज कीजिए, महसूस कीजिए जब तक आप महसूस ना कर लें आगे ना बढ़े। मैं एक प्रकाश स्वरूप चेतन शक्ति भ्रकुटी के बीच में बड़े आराम से बैठी हूं। यही है मेरा वास्तविक स्वरूप। अब मैं अपने को इस शरीर से ऊपर उठता हुआ महसूस कर रही हूं। अब मैं सन मून एंड स्काई से अबव सूक्ष्म लोक से भी अबव ब्रह्म में तत्व में बुद्धि के द्वारा आ पहुंची हूं। पहुंच जाइए अपने रियल अबोर्ड में, वास्तविक घर में। तीसरे नेत्र से मैं आत्मा ब्रह्मलोक में अपने प्यारे पिता को देख रही हूं। महसूस कीजिए भगवान के सामने मैं आत्मा विचारों द्वारा पहुंच चुकी हूं। और मन ही मन अब मैं बातें करती हूं। प्यारे प्रभु पिता, हम आपको कितने दिनों से ढूंढ रहे थे लेकिन ढूंढ नहीं पाए। आपने हमें अपने धाम में आज बुला ही लिया। ब्रह्मलोक में प्रभु से, शिव बाबा से मन ही मन बातें कीजिए। निराकार ज्योति बिंदु को शिवलिंग के रूप में हम मानते आए, अब प्यारे प्रभु पर अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी चढ़ा दीजिए। भगवान को अपने अंदर के नेगेटिव वेस्ट थॉट्स जो ज्यादा चलते हैं वे दे आइए। अपने सारे विकार जो आपको तंग कर रहे हैं वो प्रभु के ऊपर चढ़ा दीजिए। प्रभु प्रसन्न होते हुए नजर आ रहे हैं। हम बच्चों को स्वच्छ होता हुआ देखकर शिव पिता अति प्रसन्न हो रहे हैं। अंदर की भावनाएं हमें महसूस हो रही हैं। अब परमात्मा से बातें करते हुए जो भी संबंध आपको अच्छा लगता है उसको जोड़िए। प्यारे प्रभु पिता, आप मेरे सच्चे सच्चे पिता हैं। मेरी कितनी अच्छी पालना कर रहे हैं। आप मेरे सुप्रीम टीचर हैं। इतनी ऊंची ईश्वरीय विद्या आपसे मुझे मिल रही है। प्यारे पिता, आप मेरे सतगुरु हैं। आप मुझे मुक्ति, जीवन मुक्ति प्रदान करते हैं। इस प्रकार मन ही मन विचारों के द्वारा ब्रह्म लोक में पहुंचकर प्रभु से बातें करनी है। अब धीरे धीरे वापिस इस कर्म क्षेत्र पर हार्मनी हॉल में पहुंच जाएं। ओम शांति, ओम शांति।